الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. سورة هود آيات نمبر 69 سے 95 تک. یہ دو رکوعات جو ہیں مشتمل ہیں دو قوموں کے حالات کے اوپر, جیسے کہ ہم پہلے بھی تین قوموں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, نوح علیہ السلام کی, عاد کی قوم, صالح علیہ السلام کی قوم. تو اب ہم نے آج انشاءاللہ پڑھنا ہے لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کے بارے میں. مگر اس سے پہلے لوط علیہ السلام کے بعض کہتے ہیں چچا تھے ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. تو چونکہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کے پاس آئے وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے, پھر لوط علیہ السلام کے بعد پاس گئے, تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے آپ دیکھیں گے یہاں پہ, اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو سائڈ پہ ان کی قوم کا نہیں ذکر آ رہا یہاں پہ, ان کا ویسے ذکر آیا, مگر جو قوموں کا ذکر ہے وہ آپ آگے دیکھیں گے لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا. اور یہ ذکر آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ, مگر ہر دفعہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو نصیحت کی بات الگ سے ملتی ہے. تو دیکھتے ہیں آج کا سبق آیت نمبر 69 سے 95 تک سورہ ہود. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا, اور البتہ تحقیق آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے, یعنی کون کس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, فرشتوں کو. تو رسول اصل میں بھیجا ہوا ہوتا ہے, اس کا اصل معنی یہ ہے. پھر ہمارے ذہن کے اندر یہ رسول کا نام آتے ہی ایک ہستی کا نام آ جاتا ہے جس کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس لیے ہم نے اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے, ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا لے کر آئے, بالبشرا, خوشخبری کے ساتھ آئے. اب ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی زندگی کے بارے میں اگر آپ پہلے سے نہیں جانتے تو تھوڑا سا یہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عراق میں پیدا ہوئے, پھر فلسطین گئے, پھر سفر کرتے کرتے مصر تک گئے, اگر وہاں سے واپس آئے اور فلسطین میں ہی آ کے انہوں نے اپنا گھر بنایا, اور حجاز کے علاقے میں جہاں پہ مکہ ہے وہاں پہ بھی آتے جاتے رہے ہیں, وہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر کیا. تو مصر سے عراق تک کا سارا علاقہ یہ گھومے پھرے تھے, لیکن اصل ان کا وطن جو تھا وہ عراق تھا, جہاں سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیسے ان کی قوم کے ساتھ سارا معاملہ ہوا اور پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام اب ہجرت کر کے آ چکے ہیں اور وہ فلسطین میں رہتے ہیں, اور وہاں پہ ان کی عمر اتنی بڑی ہو چکی ہے اس وقت کہ 100 ایئرز سے بھی بعض روایات میں ہے کہ کچھ اوپر ہی تھی ان کی عمر, ٹھیک ہے. اور ان کی بیوی سارا وہ بھی 90 سال کی عمر یا اس سے بھی اوپر کی تھی. تو یہ گھرانہ یہاں پہ رہتا تھا, ان کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں خوشخبری لے کر. قالو, انہوں نے آ کے پہلے کہا سلاما, سلام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی ہیلو ہائے گڈ مارننگ نہیں کرتے, وہ بھی کیا کہتے ہیں, سلام, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ اے ایمان والو, اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو, اور ان گھر والوں پر سلام نہ کر لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. تو तो यानी घरों में भी जब आप दाखिल हों तब भी सलाम करना चाहिए। और सलाम एक मोमिन का भी शेवा है। आपको पता है कि जब जन्नत में भी जाएंगे तो फरिश्ते जन्नतियों के ऊपर भी हर दरवाजे से कहेंगे सलामुन अलैकुम। तो हमें चाहिए कि हम ये गैर मुस्लिमों को तो आप हेलो हाय कर सकते हैं, लेकिन जहां पे आप अपने मुसलमान को देखें वहां पे सलाम करें। और कोई अगर चाहता है ना कि वो जन्नत में बगैर किसी प्रॉब्लम के दाखिल हो जाए, तो उसको सलाम को आम करना है। अफशो सलामा बैनकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को फैलाओ अपने दरमियान। और सलाम असल में है क्या? ये एक दुआ है जो आप दूसरे को देते हैं। जब आपने दूसरे को सलाम किया तो आपने दरअसल उसको कहा तुम पर सलामती हो। और एक कॉल ये भी है कि ये सलाम अल्लाह ताला का, अस्सलाम अल्लाह का नाम है, यानी आपने उसको अल्लाह की हिफाजत में दे दिया कि तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में रहो। तो ये चीज हमें बाज दफा लगती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, या ये बस ऐसे ही एक ग्रीटिंग है, जैसे हेलो हाय है इसी तरह ये ग्रीटिंग है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत मीनिंगफुल है। और इसमें कितनी प्यारी दुआ है दूसरे के लिए सलामती की। यानी क्या मतलब है कि जब आप किसी से बात को शुरू करें तो अल्लाह का नाम है एक तो अस्सलाम, ठीक है, तो आपने अल्लाह के नाम से उसके साथ बात शुरू की, ठीक है, और दूसरा ये कि सलामती का इटसेल्फ माना भी क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया की हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी और आखरत की हर अजाब से सलामत रखे। तो ये ऐसी चीज नहीं है जैसे कि गैर मुस्लिमों की, उन्होंने क्या कहना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, तो उसमें बस अच्छी हो तुम्हारी रात, अच्छा हो तुम्हारा दिन। उससे बेहतर अल्लाह ताला ने हमें जो कलमा दिया वो बहुत अच्छा है। और हमें ये पता चलता है कि देखिए ये सिर्फ इस उम्मत में नहीं है बल्कि फरिश्ते भी सलाम करते हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी उनको जवाब दिया आला सलाम, वो भी आगे से जवाब में कहते हैं तुम पर भी सलाम हो। तो इससे पता चलता है कि सलाम का जवाब भी देना चाहिए। और कब देना चाहिए? जिस वक्त ही कोई आपको सलाम करे उसी वक्त उसका जवाब भी दे। सलाम में पहल करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब है, ठीक है। तो अब जो आपको सलाम करता है अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो आप भी अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं, या वरहमतुल्ला कह सकते हैं, या वबरकातुहू का इजाफा भी कर लें। तो आप आगे देखेंगे कि फरिश्तों ने सलाम के बाद ये भी कहा है। अब आगे देखेंगे अगली आयत के अंदर ही, आयत नंबर 73 में आप देख रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि देखिए आगे और भी बढ़ के दुआ देना कि आपके ऊपर अल्लाह की रहमत हो और आपके ऊपर बरकतें हो, कितनी प्यारे कलिमात हैं जिससे आप दूसरे को ग्रीट करते हैं। अक्सर हमारे यहाँ, खास तौर पे मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें, यानी ये लेट 80s की बात है, उस वक्त भी ये था कि स्कूल की लड़कियां जो थीं वो हेलो हाय करने को बहुत बड़ी चीज अपने लिए समझती थी, और सलाम कोई करे ये उनके लिए कोई वो नहीं था, यानी कोई मानूस चीज भी नहीं थी। और वैसे भी उनको बड़ी अजीब सा लगता था कि कोई सलाम करे ऐसे, वो उसको देखते थे जैसे कि पता नहीं ये बहुत ही कोई बैकवर्ड सा इंसान है। और हाय हाय, बस हाय में क्या है, यानी आपने अपने सुबह का आगाज ही किया हाय हाय से। तो ऐसे कलिमात को खास तौर पे मुसलमान आपस के अंदर इस्तेमाल ना करें। और अगर आप इसको समझ के इन कलिमात को कहते हैं तो सोचें कि ये आप कितनी प्यारी दुआ दे रहे हैं दूसरे को, और कौन नहीं चाहता कि उसको दुआ दी जाए। तो असलाम के वैसे भी आदाब ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवार जो है वो पैदल चलने वालों को सलाम करे, पैदल चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, थोड़ी जमात जो है वो कसीर जमात को सलाम करे। और ये हकूक में से एक मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमान पे कि वो उसके सलाम का जवाब दे। बाज दफा लोग किसी से नाराज होते हैं तो कोई सलाम करता रहे जवाब ही नहीं देते, तो ये तो हक है उसका कि आप उसके सलाम का जवाब दीजिए, حقوق کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اسی طرح ایک حق یہ بھی ہے مسلمان کا کہ چھینک لینے والے کو الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، یہ بھی اس کا حق ہے آپ کے اوپر۔ پھر دعوت کوئی آپ کو دے تو اس کو آپ قبول کریں، مریض کی عادت کریں اور جنازے کے ساتھ جائیں، یہ تمام حقوق ہیں۔ اور اگر آپ کو نان مسلم سلام کرتے ہیں، اہل کتاب وغیرہ یا کافر وغیرہ سلام کریں، بعض دفعہ کر لیتے ہیں یہ لوگ بھی، انہوں نے سیکھ لیا، تو آپ اس کو پورا پورا کچھ نہیں کہیں گے، بس وعلیکم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی حرج نہیں ہے اگر کبھی ہم چھوٹوں کو بھی سلام کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، اس میں اپنی بے عزتی نہیں فیل کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو سلام کرتے تھے تاکہ ان کو سکھائیں، ہم سکھانے کی غرض سے۔ ویسے تو چھوٹے کو بڑے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر دیتا تو اس میں اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ آپس میں ترک تعلق کیا ہو جنہوں نے، تو ان میں بہتر کون ہے؟ مثلا آپ کسی ساتھ بات نہیں کرتے، وہ بھی جب ناراضگی آپ کی، اول تو ایسی ناراضگی رکھنی نہیں چاہیے، لیکن اگر مثلا کسی ساتھ کوئی ناراضگی ہے، اب آمنا سامنا ہو گیا، گئے جب آمنا سامنا ہوا تو آپ نے ادھر منہ پھیر لیا، اس نے ادھر منہ پھیر لیا، یہ اس کا مطلب دونوں ہی میں کوئی خیر نہیں۔ فرمایا ان میں بہتر کون ہے ان دونوں میں، جو سلام میں پہل کر لے، آگے بڑھ کے دوسرے کو آپ کہہ دیں السلام علیکم۔ تو اس لیے سلام کو اپنا طریقہ بنانا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہے، اس کے اوپر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے نیکی کمانے کا، یعنی ہم نیکی کے کئی مواقع ڈھونڈتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ سلام کرنے میں بھی تو ہمیں نیکی ہے، ٹھیک۔ اور ایک نہیں کئی نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملیں گی صرف السلام علیکم کہنے میں، کتنے سارے سلام آپ کر سکتے ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کرے گا، اور اب یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے، کیونکہ اگر کسی کو آپ سلام کر ہی لیتے ہیں تو وہ آگے سے بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں کیا آپ کو میں جانتی ہوں، تو آپ نے یعنی مجھے سلام کیوں کر لیا، یا اس کا مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ کہ اجنبی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، صرف جان پہچان والے کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ اس لیے سلام کیا کہ یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ تو وہ انہوں نے جواب دیا سلام، فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، پھر نہ ٹھہرے مگر لے آئے ایک تلا ہوا بچڑا، یعنی انہوں نے ذرا دیر بھی نہیں ٹھہرے کہ آپ بیٹھے ہیں پھر ان کے ساتھ باتیں کرتے رہتے کہ کسی طرح اٹھ کے چلے ہی جائیں، اب جب نہیں جا رہے تو پھر اٹھے چاروں ناچار، پھر ان سے پوچھا ہو کہ بھئی آپ کچھ کھائیں گے، یا پھر جب ہم نے کچھ بھی نہ کھلانا ہو نا، پھر ہم کہتے ہیں چائے تو نہیں پئیں گے، کھانا تو نہیں کھائیں گے آپ، یعنی دوسرا اب آگے سے کیا کہے گا، نہیں جی میں پھر بھی کھاؤں گا، نہیں وہ تو یہی کہے گا نا، نہیں۔ تو یہ نہیں کرنا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا جی آپ کھائیں گے پئیں گے، آپ کو بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی، میں لاؤں کہ نہ لاؤں، یا اتنی دیر کر دیں کہ جو ہے دوسرا بھی بیٹھا بیٹھا تھک جائے، اور اس کے بعد اب چاروں ناچار کسی طرح اٹھے ہی مشکلوں کے ساتھ اور جا کے پھر کچھ لے کر آنے، یہ مہمان نوازی کا طریقہ نہیں ہے۔ مہمان نوازی یہ ہے کہ اسی وقت اس مہمان کے سامنے جو بھی دستیاب ہو وہ رکھا جائے، اور یہ بھی مہمان کا ایک اکرام ہے، دیکھیں یہ بھی مہمان کی ایک عزت ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ اس زمانے میں ایک ایک جانور کی بہت ویلیو ہوتی تھی، کیونکہ جانوروں سے ہی وہ مطلب کاروبار بھی کرتے تھے، ان کو بھی بیچتے بھی تھے، ان کے پر سواریاں بھی کرتے تھے، ان کا گوشت بھی کھاتے تھے، ان کا دودھ بھی پیتے تھے، ان کی اون بھی استعمال کرتے تھے، تو جانور بہت ویلیوبل کموڈیٹی تھی۔ تو انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ کچھ جا کے کوئی پتے ہی اٹھا کے لے آتے کہ آپ کے آگے رکھ دوں، کوئی اور بچی کچھ چیز، کوئی دال، کوئی چیز گھر سے لے آتے، انہوں نے قیمتی چیز ایک بچڑا، اور آج بھی آپ دیکھیں گوشت کی قیمت کتنی زیادہ ہے، حالانکہ گوشت उससे ज्यादा कहीं दस्तियाब है। उन लोगों के पास तो कोई मार्केट्स नहीं थी कि जाते और जाके कहीं से खरीद के ले आते। आज तो आप जिस वक्त चाहें आपको गोश्त अवेलेबल है, उनके पास तो ये जानवर ही है, ये जानवर खत्म हो गए तो गोश्त खत्म। लेकिन तब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं किया कि कोई भी फालतू और जो बची खुची कोई चीज लाके आगे रख देते, उन्होंने बेस्ट चीज जो थी ना वो पेश की मेहमान के आगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि मेहमान नवाजी 3 दिन है और जायजा 1 दिन है, यानी खातिर मदारत। साहबा ने पूछा, या रसूल जायजा क्या है? फरमाया 1 दिन और 1 रात उसकी ज्यादा खातिर मदारत करी जाए और 3 दिन उसकी जियाफत करे, यानी खाना खिलाए उसको। इससे ज्यादा दिन कोई रहता है तो फिर जो भी मेजबान करेगा वो सदका है। और फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान के लिए ये है कि उसको वो मेहमान नवाजी करके, क्योंकि वो अल्लाह और यौमे आखरत पर ईमान के साथ इसको जोड़ा है कि उसको फिर ये चाहिए जो रखता है ईमान। हम सब कहते हैं हम अल्लाह और यौमे आखरत पर ईमान रखते हैं, तो फिर हमें ये काम करना है कि मेहमान नवाजी की जाए। अव्वल तो बाज खवातीन इस कदर ज्यादा परेशान होती हैं कि कोई आ क्यों गया हमारे घर, हमारा घर गंदा हो जाएगा, बस घर सजाने के लिए हमने रखे हुए, देखने के लिए रखे हुए, कोई आ जाए तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। और अगर कोई आ जाए तो उसके बाद उसकी मेहमान नवाजी करना और ही मुसीबत लगती है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन अक्सरियत का हमारा हाल ये हो गया है कि अब ये तकलीफ मैं क्यों उठाऊं कि मेहमान के लिए कुछ मेहमान नवाजी करूं, ये भी एक मुसीबत समझते हैं। हालांकि आप ये सोच लें कि ये अंबिया का तरीका, नबियों की सुन्नत है। अगर आप ये कर रहे हैं ना तो आप नबियों की सुन्नत पूरी करते हैं। इसके ऊपर कभी तेवरियां ना चढ़ाएं, कभी पैर ना बढ़ाएं, कभी मुंह ना चढ़ाएं, क्यों आ गए, मुसीबत आ गए, आए मुझे मेहमान नवाजी करनी पड़ गई। बल्कि फरमाए पहले दिन तो तकल्लुफ करें आप, तकल्लुफ उस दिन करना, यानी ये जो फरमाए ना 1 दिन और रात उसकी खातिर मदारत करें, यानी तकल्लुफ करें, आप खास कुछ करके उसके सामने पेश करें। ऐसे नहीं कि बस जो भी है उठा के बस रखा, तो क्यों? इसलिए क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा। तो फिर आप तकल्लुफ के साथ उसके आगे पेश करते हैं, और बाकी दिन वो अगर स्टे करने वाला मेहमान है तो बाकी दिन आप उसकी जियाफत करें, खाना खिलाएं वगैरह उसको, फिर उसके बाद जो करेंगे वो सदका है। तो इससे हमें खास पता चलता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। तो जितनी आपकी तौफीक है, इसराफ की जरूरत नहीं, कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जितनी आपकी तौफीक है उसके मुताबिक करें। हम क्या करते हैं, जो अच्छी अच्छी चीज है वो उठा के वैसे ही नहीं मेहमान के आगे रखते, वो तो बिल्कुल पीछे कर देते हैं कि ये तो बच्चों ने खाना है, और मेहमान को जो फालतू आलतू है वो उसको दे दो। जबकि आप सोचें कि सहाबी रसूल हैं और उनके घर में जब मेहमान आए कोई बन के, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, उनके घर में तो कुछ था ही नहीं सिवाय बच्चों के लिए खाना था। और क्या फरमाया था अपनी बीवी से उन्होंने कि बच्चों को बहला के सुला दो, भूखा ही सुला दो, और जो बच्चों का खाना है वो तो इतना थोड़ा सा होगा जाहिर, वो रख देना और चराग गुल कर देना, चराग बुझा देना कि अंधेरे के अंदर पता ही ना चले, खुद मुंह चलाते रहे और मेहमान खाता रहा, मेहमान ने सोचा ये भी खा रहे। कितनी बड़ी मिसाल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन फिर उनको खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने इतनी पसंद की आपकी मेहमान नवाज, और हमारे घरों में तो माशाल्लाह इतना होता है कि खाना फिकता है फिर भी हमारे दिल बड़े नहीं है ना, कि हाँ हमारे दिल इतने बड़े हों कि हम दूसरे के आगे पेश कर सकें। बच्चों के मुंह से निवाला छीनना दूर की बात है, वो तो भूल ही जाए, अगर कुछ वैसे ही घर में जो फालतू फालतू लगा है वो गार्बेज में चला जाएगा, मेहमान के सामने नहीं पेश हो सकेगा, रखे छोड़ेंगे उसको। दूसरा एक अहम पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आप जिसको जानते पहचानते हैं या जिसके साथ आपको बड़ी मोहब्बत है उसी की तो आप मेहमान नवाजी करें, बाकी मुझे क्या पता कौन है ये कौन नहीं है, इनकी मेहमान नवाजी को छोड़ो, नहीं कोई अजनबी भी आ जाए, कभी जैसे कोई हस्बैंड के ऐसे वो अपने दोस्त को साथ ले आते हैं जो आपके तो कुछ नहीं है, या आपके ससुराल में से कोई आ जाते हैं, या कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसको आप इतना नहीं जानते, किसी काम से आया वो। अब ये नहीं पूछना कि भाई अच्छा ये तो काम से आया तो ये इसका क्या ताल्लुक कि मैं इसको कुछ खिलाऊं, मैं इसको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखे पूछ नहीं रहे कि आप किसी काम से आए, काम से आए तो काम करें तो जाए, फिर मैं आपको क्यों खाना खिलाऊं, नहीं बस आ गए तो मेहमान है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये बड़ा ही उनका आता है कि वो मेहमान नवाजी बहुत किया करते थे, और इतनी मेहमान नवाजी करते थे कि बाज जगह पे तो ये आता है कि वो खाना नहीं खाते थे बगैर किसी के, तनहा अकेले नहीं खाना खाते थे, जब तक उनके किसी को और को बुला नहीं लेते थे, खाने में शामिल नहीं कर लेते थे। वो एक इसराइली रिवायत है ना कि उनके साथ एक दफा एक आदमी खाने के लिए बैठा तो फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो उसने कहा मुझे नहीं पता अल्लाह कौन है किसके नाम पे पढ़ूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा चलो फिर मेरे खाने से उठ जाओ, वो कहने लगा अच्छा फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, वो काफिर था ना तो उसने कहा था कि मैंने नहीं मैं मुझे क्या पता कौन अल्लाह, मैं नहीं किसी अल्लाह को जानता, तो उठ के चला गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसने कुफर तो मेरा किया, इसके बावजूद मैंने तो इसका रिस्क नहीं बंद किया, और तुम्हें तुम्हारे पास एक दिन लुकमा खाने के लिए आ गया और तुमने उसको खाली भेज दिया। अब इतनी बड़ी बात हो गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा के पीछे भागे उसकी तलाश में, उसे कहा वापस आ जाओ वापस आ जाओ, उसने कहा मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है, अब आप मुझे वापस बुला रहे हैं, पहले कह रहे थे उठ जाओ यहां से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आया, उसने कहा मैं ईमान लेकर आता हूँ उस रब पे। तो ये देखें कि यानी कितनी उनके अंदर मेहमान नवाजी थी, और ये भी इमाम तबरी ने लिखा है अपनी तफसीर में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सामने ये जब बछड़ा रखा है तो उन्होंने कहा कि हम कीमत दिए बगैर कोई खाना नहीं खाते, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी कीमत यह है कि तुम खाने के शुरू में अल्लाह का जिक्र करो और आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करो। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया तो देख लें इस वजह से ही अल्लाह ने इनको अपना खलील बनाया, इसका मतलब बिस्मिल्लाह पहली उम्मतों में भी थी और खाने के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी था, तो ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका था। और जिस रब ने ये नेमत दी है खाने की, उसका नाम लिए बगैर ही शुरू कर देना और उसका शुक्र अदा किए बगैर ही खत्म कर देना, ये कोई मोमिनों का तरीका नहीं होता। वो जो अल्लाह को बहुत याद करने वाले होते हैं और याद रखने वाले होते हैं, वो खाना खाने से पहले भी अल्लाह को याद करके खाना खाते हैं। जिस रब ने दिया उसका हक है कि उसको याद किया जाए, कि उसने ये नेमत अता फरमाई और उसका शुक्र किया जाए। फिर जब देखा क्या आई दिया हूं उनके हाथों को, किन के फरिश्तों के, ला तसिलु इलैही नहीं पहुंचते उसकी तरफ, किसकी तरफ, वो जो बछड़ा तल के रखा हुआ था उसकी तरफ जा ही नहीं रहे, उनके हाथ उठ ही नहीं रहे, वो बैठे हुए नकीरा हूं, अनजान हुए उनसे, यानी उनको थोड़ी परेशानी हो गई, ना वाकिफ। जब इंसान किसी चीज से होता है ना, या अनजान जैसे जिसको कहते हैं ओपरा सा होना, तो कि समझ नहीं आ रही कि भाई मामला क्या है, तो फिर इंसान घबरा जाता है। तो अब ना वाकिफ हुए कि भाई ये मामला क्या है, परेशानी हो गई, वह औ जैसा मिनहुम खीफा, और छुपाया उनसे खौफ को कि पता नहीं कौन है, दिल ही दिल में खौफ महसूस हुआ। अब ये तस्वीर कशी अल्लाह ताला कर रहे हैं कि वहां पे हो क्या रहा था, अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या चल रहा था, और जैसा जो है ना वो दिल में छुपाना है, दिल में खौफ आया, और इससे ही पता चला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहचाना नहीं कि ये फरिश्ते हैं, इतने जलीलुल कदर पैगंबर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि ये तो इंसान है ही नहीं, मैं क्यों इनके लिए इतनी तरद्दुद कर रहा हूं। देखिए आखिर एक बंदे का जाना, बछड़े को जिबा करना, फिर लाना साफ करना, गोश्त उसका बनाना, उसके भूनना या तलना, फिर उसको बाद उसको लेकर आना, इसमें कितना टाइम लगा होगा। तो इस पूरी मेहनत ये करी और सारा कुछ किया, और ये तो फरिश्ते हैं, ये कहाँ खाएंगे ये पता नहीं। इसका मतलब अंबिया भी आलिमुल गैब नहीं होते, जितना गैब का इल्म उनको अल्लाह ताला ने दे दिया बस उनको उतना ही पता है। उनको अगर जन्नत का बता दिया, जहन्नुम का बता दिया, कयामत का बता दिया, ये भी गैब के इल्म है ना। जितने अल्लाह ताला ने उनको गैब के इल्म दिए उनको बस उतना पता था, उनको इससे बढ़ के नहीं पता। हम उनके सामने बैठे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता चल रहा कि ये फरिश्ते हैं, और अंदर से घबरा रहे हैं कि ये की पता नहीं क्या इरादा लेकर आए। क्योंकि उस जमाने में भी, और एक हमारे भी हाँ ऐसा हुआ करता था कि किसी के घर का नमक खाया होता था ना किसी ने, तो उसको नुकसान नहीं देता था, और अगर किसी के घर कोई नहीं खा रहा होता था तो इसका मतलब ये होता था कि किसी बुरे इरादे से आया। पहले हमारे भी लोग कहते थे ना, अब तो खैर ये रह ही नहीं गया, अब तो जिस घर का नमक खाया होता उसी में डाके डलवा रही होती हैं कई मेड्स। तो लेकिन पहले क्या होता था कि इस घर का हमने नमक खाया है, हमने यहाँ पे नमक हरामी नहीं करनी। तो उनको ये था कि अच्छा ये खाना नहीं खा रहे तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कोई मसला लेकर आई, कुछ मसला है। तो अभी भी नहीं इसका मतलब पहचाना उन्होंने। कालो, फिर अब उन्होंने जब देखा ना फरिश्तों ने कि ये तो कोई बेचारे परेशान हो गए, या तो उनके चेहरे से देख के, हालांकि औजस का मतलब है दिल में महसूस करना, तो या तो उनके चेहरे पे वो खौफ आ गया जिससे ये सूरत हाल बनी। दूसरी बात है कि सूरह हिजर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि मुझे तो तुमसे डर लग रहा है, क्योंकि फरिश्ते दिल के हालात तो नहीं जानते, और यहां पे भी है औ जैसा, तो दिल की बातों का फरिश्तों को नहीं पता, मगर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद बता दिया तो अब वो कहती हैं ला तखफ, आप डरे नहीं, इन्ना उर्सिलना इला कौमी लूत, हमें तो वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजा गया। आप समझ आ गई कि अच्छा ये तो फरिश्ते हैं। वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ضحكت, उनकी बीवी खड़ी हुई थी वो हंस दी। अब बीवी खड़ी हुई किस क्यों हंस दी कि देख उनको तो समझ रहे हैं कि ये इंसान है तो ये तो फरिश्ते निकले, वो तो इसलिए नहीं खा रहे तो इस वजह से हंस दी। या फिर बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आगे की बात पहले हुई और ये बात बाद में हुई, और वो आगे की बात क्या है इसको कहते हैं तफसीर के अंदर एक कायदा, एक रूल है तकदीम और ताखीर का, यानी जो पहले बात है वो बाद में आई और जो बाद में बात है वो पहले हुई है। और वो क्या बात है, फबशरनाहा बी इसहाक, बस बशारत दी हमने उसको इसहाक की, वो मिन वराई इसहाक याकूब, और उन पीछे इसहाक के याकूब अलैहिस्सलाम की भी थी, यानी बेटे और पोते की एक साथ उनको खुशखबरी दी। तो हंस पड़ी क्योंकि एक बूढ़ी औरत है उसको कह रहे तुम्हारा बेटा होगा, सारी जिंदगी तो औलाद हुई नहीं, सारी जिंदगी वो बांझ रही, और औलाद की ख्वाहिश के बावजूद उनकी औलाद नहीं पैदा हुई, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अब 100 से ऊपर उम्र हो गई तो अब मुझे बच्चा होगा। वैसे भी किसी औरत को कह दें तो वो हंस पड़ती है, तो ये तो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। ये भी हो सकता है, और वो ये भी बात हो सकती है कि वो पिछली बात जो गुजरी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनसे डर रहे थे और इनके आगे खाना रखा हुआ है और लो ये तो फरिश्ते निकले, इस पे भी हंस सकती है, तो वो हंस पड़ी। और देखिए ये अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस उम्र में जाके ये खुशखबरी दी है, ये भी एक मुजजा था कि इस उम्र में औलाद का मिलना, इससे पता चलता है अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं, कोई काम उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। वो उन्होंने कहा हम तो भेजे गए हैं लूत अलैहिस्सलाम की तरफ, कौम की तरफ। एक ये भी मुफस्सिरीन ने लिखा है वजह, जो वजूहात इनके हंसने की थी ना, तो एक ये भी लिखी है वजह कि इसलिए वो हंसी थी कि उन्होंने कहा कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब के लिए। तो सबको पता था कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की क्या हालात हैं और वो कितनी गंदे कामों में मुलव्वस है। तो अब बहुत दफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत तंबीह की, वार्निंग्स दी, लेकिन वो नहीं बाज आए। तो अब उनको एक खुशी थी कि ठीक है, अब ऐसी कौम को देखो अजाब आ गया ना। पहले वो कहते थे तो अच्छा हुआ कि इनके ऊपर अजाब आ गया, फरिश्ते उन पर अजाब लेकर आए, तो वो हंस बड़ी खुश हुई। तो ये भी हो सकता है। तो ये तीनों बातें जो मैंने आपको बताई, ये ऐसे मुफस्सिरीन ने बताई हैं। तो अब ये देखिए आप कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान का जो अजर है ना, वो रखता नहीं है, अल्लाह ताला उसका बदला अता फरमाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कदर कुर्बानियां दी अल्लाह ताला की खातिर, और हर इम्तिहान में, हर मुश्किल में साबित कदम रहे, हर इम्तिहान में पूरे उतरे। अल्लाह ताला ने उनको नवाजा इस दुनिया में भी, एक बेटा ही नहीं बल्कि बेटा भी पैगंबर और पोता भी पैगंबर। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया कहते हैं, अंबिया के बाप, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर उनकी औलाद से बाहर नहीं आया। सब पैगंबर, जितने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद के पैगंबर हैं, सब उनकी औलाद में से ही है। कोई किसी और का बेटा कभी, या पोता, या उनकी नस्लों में से कोई पैगंबर नहीं बना। इतनी बड़ी बात है ये। तो यहां से ये भी पता चला कि इसहाक अलैहिस्सलाम फिर इतने बड़े होंगे, इसका मतलब कि उनकी इतनी जिंदगी होगी, उनकी जवानी होगी, फिर उनकी भी आगे औलाद होगी, उनकी औलाद में एक बेटा होगा याकूब के नाम से। अच्छा, अब ना ये ज्यूस, एक दफा एक ज्यूस से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो आप लोग कहते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया था, और हम कहते हैं कि इसहाक अलैहिस्सलाम को किया था, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारे तो इसके अंदर है ही कि इसहाक थे, जबीउल्लाह। तो हमारे जो कुरान के अंदर यहां से एक सबूत मिलता है कि इसहाक अलैहिस्सलाम को जिबा करने का हुक्म नहीं हुआ था, इसलिए कि उनकी तो पैदाइश से पहले ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इनको याकूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे इनके बेटे। अगर वो उनको कुर्बान करने का पता है कि भाई इन्होंने तो कुर्बान होना ही नहीं, इन्होंने तो मरना ही नहीं, तो फिर तो इम्तिहान ही क्या रह गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। समझ आई बात कि उनकी तो पहले ही खुशखबरी दी जा चुकी है कि इसका मतलब ये बड़े भी होंगे, इनकी भी औलाद होगी, तो फिर तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही रह गए। तो यहां से ये, अगर आपको कभी ऐसी बात कोई करे तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से आपको ये साबित होता है कुरान से। और दूसरी जगह पे सूरह ज़ारियात में साफ तौर पे भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपको इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी से भी पता चल गया। कौलत, वो बोली, या वैलता, हाय हाय, ये क्या, जैसे इंसान एक वो सोच के कि हाय ये क्या होगा, मेरे बच्चा होगा, अली दू, मैं जन्म दूंगी, वाना अजूजुन, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ बिल्कुल, वहादा बाली शेखा। ये बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है कि एक इंसान को, इतने बूढ़े को कोई कह दे तो वो कहे हाय हाय क्या हो गया, ये तो ये कैसे हो सकता है, मेरी क्या औलाद होगी, और ये मेरा शोहर भी बूढ़ा, इन्हादा शेयन अजीब, ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं बड़ी हैरत से वो कर रही हूँ, एकदम शॉक्ड हो गई ना। कालू, उन्होंने कहा, अताजबीना मिन अमरिल्ला, क्या आपको ताज्जुब हो रहा है अल्लाह के हुक्म पे, यानी ये तो नेचुरल रिएक्शन था ही, ऐसे नहीं है कि उनको कोई ये हो के कैसे अल्लाह ताला करेगा, ऐसे नहीं, बल्कि एक इंसान का एक स्पर ऑफ द मोमेंट में जो उसके अंदर से निकलती ना बात, कि हाय ये कैसे हो सकता है, वैसे वो कह रहे हैं मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं। तो वो कह रहे हैं कि आपको अल्लाह के हुक्म में ताज्जुब हो रहा है, हैरत कर रही है, अल्लाह तो जो चाहे करे, उसने तो कौन कहना है तो हो जाना। फिर आगे वो फरिश्ते देखे, उनके ऊपर रहमत भेजते हैं, रहमतुल्लाही व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हो आप पर ए घर वालों। यानी किसको कह रहे हैं वो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा ही है वहां पे, और तो कोई भी नहीं है, तो अहले बैत कौन हुए किसी बंदे के? इसका मतलब उसकी बीवी उसकी अहले बैत है, उसकी फैमिली है। जबकि बाज लोग कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में अहले बैत में वो सिर्फ हजरत फातिमा, हजरत अली, हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हजरत आयशा उनके अहल में से नहीं थी और बीवियां उनके अहल में से नहीं थी। हालांकि यहां से पता चला कि बीवी भी अहले बैत होती है। तो उन्होंने उनको रहमत की दुआ दी, बरकतों की दुआ दी। और हम देखें दरूद शरीफ में भी पढ़ते हैं ना कि मैं बारकत आला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने बड़ी बरकतें की। बल्कि ये आता है कि जितना इलाका, ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, मिस्र से लेके ये सारा इराक, फलस्तीन, ये सारा शाम का इलाका, यहाँ पे सब जगह पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह ताला ने इस इलाके को हरा भरा कर दिया, सारे इलाके को, इसमें बड़ी बरकतें रखी। तो इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो बुजुर्गी वाला, तारीफ वाला है, अल्लाह ताला का नाम भी है हमीद और मजीद। हमीद तारीफ वाला, यानी कोई उसकी तारीफ चाहे करे ना करे, वो अपने आप में ही तारीफ वाला है। और मजद है शानो शौकत वाला, करम और इज्जत वाला, बुजुर्गी वाला। फलम्मा ज़हब अन इब्राहिम अर्रौउ, अब जब पता चल गया कि ये तो फरिश्ते ही हैं और ये तो अल्लाह की तरफ से आए हुए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खौफ दूर हो गया, वो जो नर्वस हुए हुए थे वो नर्वसनेस दूर हो गई। और ये भी पता चलता है कि डर जाना किसी चीज़ से, एक नेचुरल किसी चीज़ से इंसान का खौफ आ जाना, ये कोई ईमान के मुनाफी नहीं है, एक नेचुरल बात है, इंसान को खौफ भी आ सकता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम का जब आसा सांप बन गया था, तो खौफ के मारे दौड़े पीछे को। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि तुम क्यों डर गए, तुम्हें अल्लाह पे ईमान नहीं, तो ऐसी बात नहीं। एक नेचुरल चीज खौफ का बाइस बन सकती है। वह जाअतहुल बुशरा, और आ गई उनके पास खुशखबरी, तो अब खौफ कैसा रहना था, अब तो खुशखबरी भी आ गई, अब खौफ भी चला गया। तो इसके बाद जब चला गया खौफ भी और खुशखबरी भी मिल गई, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करने लगे, युजादिलुना फी कौमी लूत, तो वो झगड़ने लगे हमारे साथ कौम लूत के बारे में। हमारे साथ का मतलब क्या, यानी इन फरिश्तों के साथ के, या अल्लाह ताला की तरफ से, की तरफ भी हो सकता है कि अल्लाह ताला की साथ बात करने लगे, अल्लाह ताला से फरियाद करने लगे कि यह अजाब टल जाए। वो ये नहीं कह रहे थे कि उनके ऊपर अजाब नहीं होना चाहिए, वो बड़े अच्छे लोग हैं, नहीं, असल में मुजरिमों की वो सिफारिश नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे कि कुछ और मोहलत मिल जाए, ताकि हो सकता है कि वो बाज आ जाए वो लोग। क्योंकि पैगंबर जो होता है उसके अंदर खैर ख्वाही कूट कूट के भरी होती। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि दावत का काम हो नहीं सकता जब तक कि आपके अंदर सिंसेरिटी ना हो और खैर ख्वाही ना हो लोगों के लिए, एम्पति ना हो, आप फील ना करें उनके लिए। आपके अंदर अगर फीलिंग्स है ना उनके लिए, ये उनकी खैर के लिए फीलिंग्स है ना, तो तभी आप उनके साथ दावत का काम कर सकते हैं, वरना नहीं। वरना खाना पूरी होगी बस, और कुछ नहीं होगा। उस दावत के अंदर अगर वो दर्द नहीं है आपके अंदर, वो दावत के अंदर वो इफेक्ट आएगा नहीं। तो क्यों उन्होंने ऐसा किया, इन्ना इब्राहिम हलीमुन अव्वाहुम मुनीब, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، ان کی تین خصوصیات یہاں پہ بیان کی گئی. ایک خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو پہلے کیا پتا چلی؟ بڑے مہمان نواز تھے، بڑے سلام کرنے والے، سلام کا جواب دینے والے، مہمان کا اکرام کرنے والے تھے. دوسری ابھی یہاں پہ کیا پتا چلی؟ کہ خیر خواہی اتنی تھی کہ ایسی قوم جس کے مجرم ہونے میں کوئی شک نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام سے لوط علیہ السلام کو زیادہ دور تو تھے نہیں، ان کی بستیاں بھی قریب ہی تھیں، فلسطین میں تھے وہ، وہاں پہ صدوم کی بستیاں تھیں. کتنا دور ہے؟ آپ یہ سوچ لیں نا کہ وہ جو آپ کو پتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو غرق ہوئی ہے، ڈیڈ سی ہے وہاں پہ، تو ڈیڈ سی کا آدھا حصہ جارڈن میں ہے، آدھا فلسطین میں ہے، تو یہ قریب قریب ہی، یہ جارڈن کی طرف جو آج کا جارڈن ہے وہاں پہ یہ بستیاں تھیں، پانچ بستیاں تھیں جو جہاں پہ لوط علیہ السلام تھے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ بہت خراب لوگ ہیں، لیکن پھر وہ اتنی اپنی سنسیریٹی ان کے اندر اتنی زیادہ ہے، کتنی اخلاص ہے، کتنی درد مندی ہے اس قوم کے لیے، اتنا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہتے ہاں اچھا ہوا چلو اچھا ہی خس کم جہاں پاک، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ درد مند دل رکھتے ہیں. اور پھر آگے ہمیں کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کیا ان کی کوالٹیز بتاتے ہیں؟ حلم والے، تحمل والے. تحمل ایک بہت اعلیٰ کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ ایک قبیلے کے کچھ لوگ، یہ اس کے بعد نا جب وفود آئے تھے 9 ہجری میں، وفود کا جو سال تھا، تو ایک وفد آیا مسجد نبی میں جس کو کہتے ہیں وفد عبد قیس، عبد قیس کا وفد. اب جب یہ لوگ مدینہ پہنچے نا، پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ 5 ہجری میں بھی ان کا ایک وفد آیا تھا، تو کافی مطلب ان کو اسلام کا پتہ تھا اور یہ ایمان لا چکے تھے. تو جب یہ مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو مسجد نبوی کے دروازے پہ اپنی سواریوں سے کو مطلب پیچھے کیا، اترے، بھاگے، جمپ کیا اپنی سواریوں پہ سے، لپک کے جیسے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، جیسے مطلب ایک بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، اس طرح کرتے ہوئے اندر گئے. ایسے ہوتے ہیں نا جب ہم لوگ بھی بعض دفعہ ہمارے لوگ جاتے ہیں تو مسجد نبی میں تو خیر کیا دروازے کھلتے ہی کیا حال ہو جاتا ہے، ریاض الجنہ کی طرف جاتے ہوئے کس طرح دوڑتے ہیں. اب ان کا شوق تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے ان کا شوق ہے، وہ اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، محبت ہے ان کی. لیکن ہوا کیا کہ اس گروپ کے ساتھ، اب اس سے سوچیں کہ ان کے ساتھ ایک آدمی تھا عبداللہ بن عوف الاشج، جو عمر میں وہ سب سے چھوٹے تھے. انہوں نے سواریوں کے پاس رک کے ان کو بٹھایا. اب وہ تو بھاگ گئے، سواریاں چھوڑی بھاگ گئے، وہ انہیں کچھ نہیں انہوں نے پرواہ کی، لیکن انہوں نے سواریوں کو بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، اپنے کپڑے نکالے، پھر دو سفید کپڑے نکال کے ان کو پہنا، اطمینان سے چل کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ دور اندیشی اور تحمل. یعنی بڑا یہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کام کیا، سمجھداری کے ساتھ خود کو پہلے تیار کیا، اطمینان کے ساتھ آئے. تو یہ جو تحمل ہے اور جو صبر ہے، تحمل کے ساتھ ہر کام کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا نام بھی ہے الحلیم، اللہ تعالیٰ میں بھی حلم ہے اور اس کو یہ عادت پسند ہے انسانوں کے اندر. بندہ تحمل کے ساتھ چلے، تحمل سے بات کرے، یعنی کہ ہر بات کے اندر ایک بس ایک دم بس جمپی ہوں، اور ہر وقت ایک جس کو کہتے ہیں کہ افراتفری کی کیفیت رہے ہمارے اندر، اور بات کریں یا کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو اس کے اندر بھی یہ جٹری سے ہو کے رہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تحمل کے ساتھ معاملہ کریں، یہ ہمارے اندر آج خوبی بہت ہی کم ہو گئی ہے، تو اس کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم ہر چیز کے اندر تحمل، حوصلے کے ساتھ، جیسے اتنا حوصلہ کریں، تحمل کے ساتھ بھائی بات کریں. जंपी ना हो जाएं, दूसरा बात करने लगे आप उछल उछल के उसके ऊपर पढ़ रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। हाइपर होके जो हम करते हैं ना काम, हाइपर हाइपरनेस को छोड़ दें। अवाहुन, बहुत आहें भरने वाले, बहुत दर्दमंद दिल के थे, नरम दिल के थे, आहें भरते थे अल्लाह ताला के आगे। और सहाबा कराम में कौन ऐसे थे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो पता है ना, जब कुरान पढ़ते थे कितना रोते थे, इतना सोज होता था। वो अपने सेहन में पढ़ते थे कुरान, जब नमाज पढ़ रहे होते थे उसमें तिलावत करते थे, तो कुरैश की औरतें खड़ी हो जाती थी सुनने लगती थी, बच्चे खड़े हो जाते थे, तो उनको ये डर हुआ कि कहीं इनसे मुतासिर ना हो जाए। और मुनीब, बहुत अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले थे। ऐसे ही नहीं, अल्लाह ताला ने फिर इनको अपना खलील बनाया। देखिए, दोस्त बनाने के लिए भी कोई क्वालिटीज देखी जाती है ना, तो अल्लाह ताला को इनकी ये क्वालिटीज पसंद थी। जितना भी हम कोशिश कर सके ना इन क्वालिटीज को अपने अंदर लाने का, वाकई डिलिबरेटली कोशिश करें, मतलब सोच समझ के साथ कोशिश करें। अगर नहीं भी है हमारे अंदर, तो अब हमने ये पढ़ लिया तो याद रखें इसको, और जब भी याद आए तो कहें, सोचें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ऐसे होते थे, हमें भी ऐसा होना है। आप देखें, पैगाम तो पहुंचा देना एक एक काम है ना, जो उन्होंने दावत का काम तो कर दिया था। अब पैगाम पहुंचा देना ही सिर्फ एक बात नहीं है, अंबिया ने सिर्फ ये नहीं किया, बस पैगाम दे दिया, हमने तो अपना काम कर दिया। अब जाएं जहन्नुम के अंदर या जन्नत में, हमें क्या इससे, जैसे हम करते हैं। वो फिर भी अपनी कौम को पैगाम देने के बावजूद कैसे उनके साथ खैरख्वाही करते थे। अब जो अल्लाह ताला से उन्होंने एक झगड़ा किया, यानी कि अल्लाह इनको कोई दुआ की, इल्तजा की कि भाई अल्लाह ताला इनको मोहलत दे दे, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, या इब्राहिम आरिद अनहाजा, या इब्राहिम छोड़ दे इनको, इन्नहु कद जाअ अमरु रब्बिक। अब यहाँ हो सकता है कि फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए इब्राहिम आप छोड़ दें इनको, ये इनकी बात छोड़ दें आप, लूत अलैहिस्सलाम की कौम की, क्योंकि वो बाज जगह पे आता है, बाज रिवायत में वो कहने लगे कि ए फरिश्तों, क्या तुम इस कौम को हलाक करोगे, इसके ऊपर अजाब लेकर आओगे, कि अगर इनके अंदर 100 लोग हैं जो ईमान वाले हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम तब तो नहीं करेंगे ऐसा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर 50 लोग मुसलमान हो उस कौम के अंदर, तो क्या तुम उनको फिर भी अजाब दोगे? उन्होंने कहा, नहीं। फिर कम करते करते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, 10 मुसलमान हो तो क्या तुम फिर भी उनको, यानी एक मुजादला चल रहा है ना, तो उन्होंने कहा, नहीं, हम फिर भी नहीं हलाक करेंगे। फिर फरिश्तों ने कहा, ए इब्राहिम, आप इस बात को छोड़ दें, इस बस्ती में मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर है, और वो लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वाले, आप छोड़ दें इस बात को, ये अब काम हो के ही रहना है। कद जा अमरु रब्बिक, तेरे रब का हुक्म आ गया है, व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद, अब बेशक आने वाला है उनको एक अजाब, वो फिरना है ही नहीं आपकी, यानी इस बहस मुबासर को फायदा नहीं है। और अल्लाह ताला का जब फैसला आ जाता ना, तो वो टलता नहीं है। इससे पता चला कि इब्राहिम अल्लाह ताला के खलील हो के भी, अल्लाह के दोस्त हो के भी, वो उनके लिए एक तरह से दुआ कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुआ इन फासिकों के हक में कबूल नहीं हुई। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन वो भी फासिक और फाजिर ऐसा था कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ भी अपने बेटे के हक में कबूल नहीं की। इसके बाद फिर कौन ऐसे है जो सोच सकता है कि हम जितने मर्जी जो मर्जी करके चले जाएं, हम जैसी मर्जी जिंदगियां गुजार लें, हम नेकी करें बदी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, फलां हमें उस दिन छुड़ा लेगा। कैसे आपके सामने है ये कि अगर कोई फासिक और फाजिर है तो नेक आदमी तो छोड़ें, कोई पीर फकीरों के पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसी औलिया अल्लाह को समझे हुए कि वो बचा लेंगे, इतने बड़े अल्लाह के पैगंबर भी نہیں بچا سکے، لوط علیہ السلام کی قوم کو بچانا تو دور کی بات، ان کے لیے مہلت بھی نہیں مانگ سکے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ ایسے لوگوں کے حق میں ان کی دعا قبول نہیں کی گئی۔ اب کوئی لوگ کچھ بھی نہ کریں، حرام کھا رہے ہیں، دین ایمان پہ نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی کار خیر ہے، اب ہم کہیں جی ہم تو پتہ نہیں ان کے لیے دعا کر کے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں یہ بس آپ ہمارے لیے دعا کریں تو بس ٹھیک ہے، اتنا ہمارا وہاں پہ کام ہو جائے گا، ہم نے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہم نے تو آپ کا پلہ پکڑ لینا۔ پلہ پکڑنے کی کیا بات ہے، دیکھ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ نہیں قبول ہوئی ان کی دعا، جو اتنے بڑے پیغمبر، ہم کس سوچ میں؟ اس کا مطلب حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، کوئی اللہ سے کچھ کروا نہیں سکتا، چاہے وہ خلیل اللہ ہو، حبیب اللہ ہو، کلیم اللہ ہو۔ ٹھیک ہے، ولما جاءت رسلنا، اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے، کہاں؟ لوط علیہ السلام کے پاس۔ اب وہ فرشتے وہاں سے، انہوں نے کہا نہیں یہ معاملہ کنکلوڈ ہو چکا ہے، اب بات ختم ہو گئی، اب اس کے اوپر تکرار کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، سی ابہم و ضاق بہم ذرعا، ان غمگین ہو گئے وہ ان کی وجہ سے، اور تنگ ہو گیا ان کا دل ان کی وجہ سے۔ کیوں تنگ ہو گیا؟ کہ مہمانوں کو دیکھ کے نہیں، مہمانوں کو دیکھ کے نہیں، ان کی قوم کے جو کرتوت تھے ان کی وجہ سے لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور اگر ان کو مہمانوں کی پرواہ نہ ہوتی تو پھر تو وہ پریشان بھی نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، میرے مہمان ہیں، اب جو مرضی ہو، میں تو ان کا ذمہ دار نہیں ہونا، لیکن چونکہ ان کو مہمانوں کی عزت کا خیال تھا، اس وجہ سے وہ پریشان ہو گئے کہ اب میں ان کا کیا کروں گا، کیونکہ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے، اور لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم ہوموسیکشوالٹی کے مرض میں مبتلا ہے، مرد مرد سے شہوت اپنی پوری کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں آتا، دیکھیں ایک بات کو آپ نوٹ کریں کہ یہ نہیں آتا کہ عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتی تھیں، لیکن آج دیکھیں وہ وقت بھی آ گیا کہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے لوگ کہ وہ عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے لگی، جبکہ یہ عمل کس قدر برا ہے اس کی تو آگے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور یہاں پہ جب فرشتے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے بھیجے بھی خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں، ہو سکتا تو عورتوں کی صورت میں بھی آ سکتے تھے، یا بوڑھے آدمیوں کی صورت میں بھی آ سکتے تھے، یا ہو سکتا تھا آتے ہی نہ، ایسے ہی عذاب آ جاتا ان کے اوپر، کوئی عاد اور ثمود میں وہاں پہ کوئی ان کے پیغمبروں کے پاس فرشتے تھوڑی آئے تھے، یہاں پہ کیوں آئے؟ سوچا آپ نے؟ اس لیے تاکہ حجت تمام ہو جائے، ایک لاسٹ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ یہ اپنے عمل کو صحیح کر لیں۔ اب لیکن جب آپ فرشتے آئے ہیں تو لوط علیہ السلام تو بڑے ہی غمگین ہوئے کہ اب ہوگا کیا، اب ان کو میں کیسے بچاؤں گا قوم کے عمل سے۔ اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ قوم نے لوط علیہ السلام کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ اپنے پاس کسی مہمان کو نہ ٹھہرانا، ورنہ کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ابن جریر طبری نے لکھا بھی ہے اپنی تفسیر میں کہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے، فرشتوں سے یہ کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کی قوم کو اس وقت تک نہ ہلاک کرنا جب تک لوط علیہ السلام ان کے خلاف نہ گواہی دے دیں، تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آج ہم آپ کے پاس مہمان کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اب لوط علیہ السلام تو پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس بستی والے، ان بستی والوں کا یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ با خدا روئے زمین پر ان سے زیادہ خبیث لوگوں کو میں نہیں جانتا۔ پھر ان کو گھر لے کے چل پڑے، لیکن پھر دوبارہ یہی بات کہتے جائیں۔ تو اتنی ان کو پریشانی ہوئی کہ سے ہمیں یہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے دو چیزوں کا، ایک یہ کہ لوط علیہ السلام نے بھی فرشتوں کو نہیں پہچانا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو ان کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ سیکنڈلی ہمیں یہ پتہ چلا ان کی بھی مہمان نوازی کا، کہ دیکھیں فرشتوں نے جب کہا کہ ہم آپ کے پاس ٹھہریں گے تو وہ ان کو اپنے گھر لے چل رہے ہیں، और परेशान होते जा रहे हैं, गमगीन होते जा रहे हैं कि मैं कैसे इनकी इज्जत रखूंगा। वकाल हादा यौमुन असीब, और फरमाया ये दिन बड़ा ही सख्त है, बहुत मुश्किल दिन आ गया मेरे ऊपर कि अब मैं इनकी हिफाजत कैसे करूंगा। तो इससे पता चला कि मेहमान की इज्जत का ख्याल रखना, उसका इकराम करने में ये भी है कि उसकी को शर से महफूज रखा जाए, उसको किसी नुकसान से महफूज रखा जाए। ये ना कि आ जाए कि खुद तो एसी के कमरे में जाके बैठ गए, मेहमान बाहर गर्मी में बैठा बैठा तो बैठा रहे, खुद ही चला जाएगा। गर्मी में आया तो बैठा रहे, खुद हम एसी में बैठे हैं, खुद ठंडा पानी पी रहे हैं, उनको लाके नलके का पानी दे दिया। तो देखिए हर किस्म की तकलीफ से, उनको परेशानी से, उनको अब ऐसे खतरे तो नहीं है लेकिन उनको किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचाना, ये भी मेजबान की जिम्मेदारी है। वजाअहु, और आई उनके पास कौमहु, उसकी कौम, युहरअउना इलैहि, इतनी बेशरम कौम थी वो कि दौड़ती भी आई है, ऐसे भागते हुए आ रहे हैं जैसे कि इनको कोई पुश कर रहा है, इनको कोई हांकता वाला आ रहा है, बेख्तियार होके नहीं, बेतहाशा भागते आ रहे हैं खुशी से कि आ गए हैं कोई लड़के। नहीं आप सोचें कि अगर औरतों के साथ भी वो अपनी पूरी कर रहे होते ख्वाहिश, तब भी ये किरदार ही कितना गलीज है कि यानी जिनके साथ औरतें भी होती ना, जो जिनके साथ एक ताल्लुक जायज है, तब भी ये कितनी बेशर्मी की बात है कि भागे हुए आ रहे हैं किसी के साथ अपनी शहवत पूरी करने के लिए, इस तरह से जो किसी के मेहमान बने हुए, जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इनके अंदर हया खत्म हो चुकी थी। और मैंने कबलू कानू या अमलून सयात, और इसे पहले भी वो अमल करते थे बुरे, यानी ऐसे नहीं था कि फर्स्ट टाइम कर रहे थे, इससे पहले भी वो यही गलत कार्यां करते थे और इसके अलावा भी और बुराइयां करते थे। क्या करते थे? राहजनी करते थे, लोग डाके डालते थे, रास्तों में खड़े हो जाते थे, लोगों को लूट लेते थे और खुलेआम मजलिसों में बैठ के गंदी बातें करते थे। और इसी से आप देख लें कि वो भागे आ रहे हैं तो इनको ये शर्म नहीं है कि हाय दूसरा क्या कहेगा या मेरी सोसाइटी में क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे ही ऐसे थे, कोई उनके अंदर बचा नहीं था जो जो सही इंसान हो, जो उनको कहे कि भाई नहीं ऐसे करो, सब ऐसे थे। और शर्म उनकी खत्म हो चुकी थी। ये तो होती है ना कि कोई बुराई करता है लेकिन कोई बुराई की कराहत होती, जब ये बुराई करने वाले निकल के खड़े हो जाएं और कहें कि हम शादी कर रहे हैं, आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ, इसका मतलब हया भी खत्म हो गई और इस चीज की कराहत तो दिल में है ही नहीं। एक है छुप छुप के करना, क्योंकि वो उनको पता है ये बुरा है, अब क्या होगा, क्या कोई कहेगा, चलो किसी इंसान का ही शर्म हो, किसी सोसाइटी की हया हो, लोगों से ही छुपा रहे हूं, कोई तो हो कि ये पता है, इसका मतलब पता है कि ये बुराई है और लोग इसको बुरा समझेंगे। लेकिन जब कोई खुल्लम खुल्ला ही शुरू हो जाए और शादियां शुरू हो जाएं और इसको खुल्लम खुल्ला आपके मीडिया पे दिखाया जाना शुरू हो जाए, तो क्या कराहत रह गई, क्या बुराई रह गई वो। कहा या कौमी, उसने कहा है मेरी कौम, अब इतने बेचारे परेशान हो गए, उनका घर है उसके बाहर कौम पूरी का आगे खड़े हो गए, लोगों का हजूम है, वो कह रहे निकालो इनको, दो को हमारे हवाले करो। हा उलाई बनाती हुन अतहरुलकुम, ये मेरी बेटियां है मेरी कौम, तब भी उनको कह रहे हैं मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये ज्यादा पाकीज़ हैं तुम्हारे लिए, फतकुल्ला अल्लाह से डरो, वाला तो खुजूनी फी तईफी, मुझे ना रुसवा करो मेरे मेहमानों के सामने, इनके सामने तो ना मुझे जलील करो। अब देखिए मेहमान है, एक इंसान की इज्जत मेहमान के सामने भी होती है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मेहमान के सामने किसी की इज्जत रखना। अब मेहमान की भी इज्जत करना है और मेजबान की भी इज्जत रखी जाए मेहमान के सामने, ये नहीं है कि मेहमान बैठे हैं और बाज मर्द ऐसे होते हैं उनको अकल नहीं होती, समझ नहीं होती, अपनी बीवियों को मेहमानों के सामने जलील कर देते, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे मेहमानों के सामने ना मुझे बेइज्जत करो, मेरी भी कोई इज्जत रखो, तो उनको लॉजिकल बातें कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मेरी बेटियां है ना, इसका मतलब यहाँ पे हर गिज ये नहीं है कि उनकी जो बेटियां थी दो बेटियां कहा जाता है कि उनकी थी, तो वो कह रहे हैं कि ये मेरी बेटियां ले जाओ। भाई इतनी बड़ी कौम, इनकी दो बेटियों को क्या करेगी? ये जो लोग अंबिया की शान में गुस्ताखियां करते हैं, वो इस तरह की बातें निकाल के ले आते हैं अपनी, उन्होंने किताबों में लिखा हुआ है कि नूह अलैहिस्सलाम तो देखो कैसे थे, उन्होंने अपनी बेटियां पेश कर दी अपनी कौम के आगे, कहा मेरी बेटियां ले जाओ, इनके साथ जो भी कर लो। कितनी गलत बात है, क्या एक पैगंबर ऐसा कहेगा? वो कह रहे हैं मेरी बेटियां, मतलब मेरी कौम की बेटियां, क्योंकि जो पैगंबर होता है वो अपनी कौम का बाप होता है, और कौम की औरतें उसकी बेटियां कहलाती हैं कि ये तुम्हारे लिए, ये मेरी बेटियां हैं, ये है ना तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं। तो वो अल्लाह से डरो, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? अलैहिस्सलाम इनकुम रजुलुर रशीद, अब यानी बिल्कुल ही उनके साथ उसके ऊपर आ गए हैं कि किसी तरह ये बात को समझ जाए, और इससे उनकी बेबसी भी समझ आ रही है कि उनको लॉजिक्स भी दे रहे हैं, उनको ये भी कह रहे हैं कि देखो तुम औरतों के साथ जाके ये काम कर लो, तुम में कोई समझदार आदमी एक भी नहीं है कि एक बंदा ही कोई कोई ऐसा तो खड़ा हो जाए जो कोई समझाए, कोई कहे कि नहीं भाई सही कह रहे हैं वो, ऐसे ना किया जाए। इससे पता चलता है ना कि हुज्जत तमाम हो गई, यानी एक बंदा भी उनके अंदर कोई हया वाला नहीं था। हुज्जत तमाम हो गई, जब हुज्जत तमाम हो जाती तभी अल्लाह का अजाब आता है। और उनका आना, उन्होंने खुद अपनी हुज्जत तमाम कर ली, दे हैव नो एक्सक्यूज नाउ। हुज्जत तमाम होने का मतलब ये है कि अब उनके एक्सक्यूज खत्म हो गए, और यहां से भी पता चल गया कि लूत अलैहि सलाम खुद इकरार कर रहे हैं कि इनमें कोई अब सही बंदा रह नहीं गया। कहा लो, उन्होंने कहा इतने ढीठ थे कि इस सारी बातों के जवाब में क्या कहते हैं, लकद अलिम तमाल अनाफी मनाति का मिन हक, तुझे पता है ऐ लूत कि हमें तो तुझको औरतों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, तेरी बेटियों में हमारा कोई हक नहीं है, यानी हमें नहीं इनकी जरूरत। वह इन्ना कलतालमु मानुरीद, और तुझे पता है कि हम क्या चाहते हैं। अब ये भी ढिठाई की इंतहा देखी, तुम्हें पता है अच्छी तरह कि हम क्या चाहते हैं, यानी अब हमारे हमारा रास्ता छोड़ दो, और हमें किन की जरूरत है तुम ये जानते हो। अब अपनी बेबसी की इंतहा को जब पहुंच गए ना लूत अलैहिस्सलाम, तो कहते हैं काला लऊ अन्नली बिकुम कुव्वा, काश मेरे अंदर तुम्हारे साथ कोई कुव्वत होती, यानी तुम्हारे लिए कोई कुव्वत होती मेरे पास तुम्हारे खिलाफ। लूत अलैहिस्सलाम अकेले हैं और वो पूरी कौम है, कैसे वो उनका मुकाबला करते? आओ या आवी, मैं पनाह ले सकता इला रुकनिन, किसी सहारे की तरफ, शदीद मजबूत, या मैं किसी मजबूत सहारे को ही थाम लेता। यानी आप देखें, आप देखेंगे बाद में जो पैगंबर आए उनकी, अल्लाह ताला ने उनको उनकी कौमों में ही भेजा, यानी उन कौमों में भेजा से मतलब यह है कि उनके कबीले की, वो उन्हीं कबीलों में से थे जिनमें वो रसूल बना के भेजेगा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू हाशिम से थे, उन्हीं की तरफ रसूल बना के भेजे गए, कुरैश में से थे। तो ये लूत अलैहिस्सलाम इस कौम से नहीं थे, इनकी बीवी तो थी इस कौम से, मगर खुद आपको पता नहीं तो इराक से आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके, और अल्लाह ताला ने इनको रसूल बना के इस कौम की तरफ भेजा था, वरना रिश्तेदारी इनकी किसी के साथ भी नहीं थी इनमें से। तो अब होता ये था कि पहले जमानों के अंदर कबीला आपको सपोर्ट करता था, आपके लिए खड़ा हो जाता था, चाहे कोई गलत बात ही क्यों ना होती, और कबीला कहता था ये हमारा आदमी है तो हमने इसके साथ खड़े ही होना। इसी वजह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इतने साल रह सके, कबीला आपकी हिमायत में था, या कबीले के सरदार अबू तालिब आपकी हिमायत में थे, चाहे ईमान नहीं भी लेकर आए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि काश मेरे पास कोई कुव्वत होती, या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ही ले लेता ताकि ये चीज रोक सकूं। तो कतादा ने इसमें लिखा है कि इससे मुराद ये कि काश मेरी हिमायत में कोई कबीला होता, और मेरी पुश्त पे कोई होते लोग, कोई लश्कर होता, या कोई ऐसे लोग होते। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला लूत अलैहि सलाम की मगफरत फरमाया, वो बेशक रुकने शदीद की पनाह की ख्वाहिश करते थे, और इसके बाद जो भी अल्लाह ताला नबी भेजे उनको उनकी कौम के मजबूत कबीले में भेजा। ये यहां से पता चला कि वो बिल्कुल तने तनहा थे। कालू, उन्होंने कहा, या लूत, अब ये फरिश्ते कह रहे हैं, ए लूत, इन्ना रुसुलु रब्बी का, हम तो तेरे रब के भेजे हैं। अब बिल्कुल आखिर आ गया ना, बिल्कुल एंड आ गया। अच्छा, अब आप देखिए ना, वहां पे इब्राहिम अलैहि सलाम ने और ना ही लूत अलैहि सलाम ने कहा कि वो फरिश्तों से लड़ना शुरू हो जाए, अगर आप फरिश्ते ही थे तो हमें पहले बता देते। वो कहते मेरा बछड़ा भी तुमने जाया किया, और यहाँ भी ये कहते मैं उस वक्त से परेशान हो रहा हूँ, तुमने क्यों नहीं बताया। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो वक्त रखा है उस वक्त ही उनको बोलने की इजाजत है, उस वक्त ही उन्होंने बताया। उससे पहले जो भी चीज है यहाँ पे उस कौम का इम्तिहान है, और वहां पे अल्लाह ताला ने मेहमान नवाजी दिखाई है इब्राहिम अलैहि सलाम की, कि जानते पहचानते दूर दूर तक जान पहचान कहीं नहीं थी, तब भी उनके सामने मेहमान नवाजी की। और यहाँ पे उनकी कौम को अल्लाह ताला ने उनकी आखिरी हद तक उनके ऊपर हुज्जत को तमाम करना था। तो उन्होंने कहा, हम तो आपके रब की तरफ से भेजे गए हैं, नहीं यसिलु इलैह का, वो हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे आपकी तरफ, वो आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। अब ये वो बाहर खड़े हुए हैं, दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कूद रहे हैं दीवारों से, और लूत अलैहि सलाम परेशान है और अपनी बेबसी की फरियाद कर रहे हैं। उस वक्त फिर फरिश्तों ने ये कहा, और फिर वो क्यों नहीं पहुंच सके, क्या हुआ? दूसरी जगह पे आता है कुरान पाक में कि फरिश्ते ने, जिब्राइल अलैहि सलाम ने तो अपना पर मारा था, वो उनको अंधा कर दिया, उसको वो पर मारने से वो अंधे हो गए, जिसकी वजह से वो भागने लगे। तो उन्होंने कहा, आप फिक्र ना करें, ये आप तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। फअसरी भी अहली का भी कतिन मिन अल्लैल, आप सिर्फ ये करें कि आप अपने घर वालों को रात के एक हिस्से में लेके चलें, वला यल्तफित मिनकुम अहदा, और आप में से कोई पीछे ना मुड़ के देखे, इल्लमरा अतक, सिवाय आपकी बीवी के। अब यहाँ पे इल्लमरा अतक को बाजुलमा ने भी अहलिका के साथ जोड़ा है कि आप अपने घर वालों को लेके चलें सिवाय आपकी बीवी के। और दूसरा माना यह भी हो सकता है कि आप अपने घर वालों को लेकर चलें, जैसे ये आ रहा है, ये रात के एक हिस्से में पीछे पलट के ना देखना, मगर आपकी बीवी यानी वो सिर्फ भेजे देखेगी। इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, ये एक मुसीबत है जो पहुंचने वाली है उनको, ये जो पहुंचने वाली है उनको, उनको पहुंच के रहना है, ये टलेगी नहीं। इन्ना मौईदा हूं, बेशक वादे का वक्त उनका सुबह, सुबह है, सुबह के ऊपर इनको सुबह में अजाब आ जाएगा। अलैसा सुबहु भी करीब, क्या सुबह करीब नहीं है? सुबह तो करीब ही है, आप अपने घर वालों को लेकर निकले, और इनके ऊपर जो मुसीबत पहुंचनी है, जो अजाब आना है, उसका फैसला सुबह के वक्त का है, और सुबह करीब है। ये जो लफ्ज है ना, तीन अल्फाज हैं सिर्फ, अलैसा सुबहु बिकरीब, मगर इतनी डेप्थ है और इतना हौसला है ना इन अल्फाज के अंदर, कि जुल्म की रात कितनी भी लंबी हो जाए, क्या सुबह करीब नहीं है? एक मायूस या एक सताया हुआ इंसान या एक मजलूम इंसान, वो देखता है कि भाई अंधेरा ही अंधेरा है, परेशानी ही परेशानी है, मसले ही मसले हैं, ये खत्म ही नहीं होके दे रहे। क्यों इन दुखों की कभी सुबह नहीं होती? क्यों ये रात खत्म नहीं होती? तो फरमाया, अलैहिस्सु सुबहु भी करीब, क्या सुबह करीब नहीं है? दिल चाहता है कि इसको अपने सामने लिख के लगा ले, जब परेशानी हो इसी की तरफ देखा जाए, अलैहिस्सु सुबहु भी करीब। ये कितना हौसला देती है ये बात, एक परेशान हाल के लिए कितनी बड़ी इंसान की एक सुकून की बात है, कि सुबह तो करीब ही है, सुबह दूर तो नहीं है, सुबह तो आ ही जानी है। क्या रात के बाद सुबह करीब नहीं होती? क्या जब अंधेरा बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, एक शाम होती है, एक अंधेरा हल्का होता है, फिर बहुत गहरा अंधेरा होता है, तभी तो सूरज निकलता है, तभी तो वो फटती है, तभी तो सवेरा होता है। तो सुबह फिर समझ लें करीब ही होती है जब रात बहुत गहरी हो जाती है। तो ढारस है हर गम ज़दा दिल के लिए, हर परेशान हाल के लिए। अलैसा सुबह भी करीब, या याद कर लें आप, याद कर लें इन तीन अल्फाज को और बोलें उस वक्त जिस वक्त अंधेरा बड़ा गहरा, परेशानियों ने घेर लिया। फलम्मा जाए अमरुना, तो जब आ गया हुक्म हमारा, जाल ना आलिया है साफिल है, हमने कर दिया उसके ऊपर के हिस्से को निचला हिस्सा। अल्लाह अकबर। देखें अब जब हुक्म आ गया अल्लाह ताला का, तो इसका ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया। हुआ ये कि लूत अलैह सलाम लेकर निकले अपने घर वालों को, अपनी बेटियों को, इनकी बेटियां ही थी सिर्फ, और अपनी बीवी को लेकर निकले, और उधर पीछे अजाब आ गया। अजाब आया है जब, तो कैसे अजाब आया कि इनका अजाब का भी एक डिफरेंट ही तरीका था इस बस्ती के अजाब का, और बहुत बड़ी इसके अंदर रहती दुनिया तक एक सबक है, और वो ये कि ऐसा अजाब किसी और के ऊपर नहीं आया। हाँ चीखा आया अजाब, जलजले आए, ये सब आया, मगर ये अजाब कि जिब्राइल अलैह सलाम अपने पर के ऊपर इस बस्ती को उठा लेते हैं और फिर उठा के आसमान तक ले गए, और बस्ती में किसी को कानो कान खबर नहीं कि हम कहाँ पहुंच गए। एक बर्तन भी, तफसीरों में लिखा है, एक बर्तन भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हिला, ऊपर ले गए, यानी वो बेखबर है अभी तक, इतनी ऊपर ले जाके कि फरिश्ते, जो आसमान के फरिश्ते, आप सोचे हैं अल्लाह हु अकबर कितनी ऊपर ये बस्ती गई होगी कि आसमान के फरिश्तों को इनके मुर्गों के बोलने की, इनके कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। इतनी ऊंचाई पे, बुलंदी पे ये बस्ती गई है, और वहां से उठा के जब पटक के मारी गई तो ऊपर का हिस्सा नीचे चला गया। और सिर्फ यहां तक नहीं, इसके ऊपर ही किसी का कुछ नहीं बचाना। वह अमतरना आलैहा हिजारतन मिन सिज्जील, और बरसाए हमने उन पर पत्थर, पकी हुई मिट्टी के, मंदूद तह बतह, ऐसे पत्थर आ रहे थे जैसे बुलेट्स हो और तह बतह आ रहे हैं, यानी वो हट ही नहीं रहे, वो तो जैसे एक, जैसे क्लाशनकोफ चलती है, एक तर तर गोलियां निकलती हैं बंदूक की, इस तरह से पत्थर की बारिश हो रही थी। वो पत्थर बुलेट से कम नहीं थे। और मुसव्वमतन इंद रब्बिक, और तेरे रब के यहां निशान जदा थे वो पत्थर भी, ऐसे थे जैसे कि हर एक का एक निशान लगा हुआ कि इसके ऊपर पड़ना। अब ये पीछे हो रहा हो जब, तो फिर वो तो लूत अलैहि सलाम की बीवी की तो हमदर्दी सारी अपनी कौम के साथ थी, वो उनमें से थी, उसका मेका था ये, इसी ने लोगों को इतला दी थी कि आ जाओ मेरे, हमारे घर में बड़े खूबसूरत लड़के आए हैं, आके ले जाओ। लेकिन जब ये हालात हुए और ये जा रही है उनके साथ, पीछे जो भी हालात हुए, इसने पीछे मुड़ के देखा कि हाय मेरी कौम, और उसी वक्त एक पत्थर आके लगा और वो वहीं रह गई। औरतों की ये कमजोरी होती है कि अपने मेके वाले या अपने खानदान वाले चाहे जितना बुरा भी कर रहे हो, उनको नहीं कहते कि आप बुरा कर रहे हैं, उनको सपोर्ट ही करते रहते। हालांकि कोई भी है, ससुराल है, मेका है, दोस्त है, बाहर वाला है, कोई भी है, हमेशा साथ हक का देना, यानी कि ये चूंकि मेरे अपने हैं इसलिए जो है मैं तो इनको ही सपोर्ट करूंगी चाहे कुछ भी ये गलत करते रहे। अब उनके शौहर अल्लाह के नबी हैं, तब भी इन्होंने अपनी रविश ना छोड़ी, और उसने अपना वफादारी अपनी कौम के साथ ही रखी। तो लिहाजा जिनके साथ वो वफादार थी, जिनसे उसको मोहब्बत थी, उन्हीं के साथ उसका खात्मा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इंसान उसी के साथ होगा कयामत के दिन जिससे वो मोहब्बत करता हो, जिसके साथ उसकी सपोर्ट होती है, जिसको वो दिल से चाहता है। अब ये मुंह से मोहब्बत की बातें नहीं कि हम कहेंगे हाँ हमें भी साहबा से बड़ी मोहब्बत है, हमें भी फला, क्या उनके काम अच्छे लगते हैं, क्या उनकी जिंदगियां पसंद है। अब इसको वो लोग पसंद थे, वो गलतकार लोग, तो ठीक है अल्लाह ताला ने उन्हीं के साथ उसको कर दी। इसी तरह नूह अलैहि सलाम की बीवी, बीवी नूह अलैहि सलाम की भी और लूत अलैहि सलाम, ये दोनों औरतें जो है ना, इन्होंने अपने शौहरों का साथ नहीं दिया, इन्होंने हक बात का साथ नहीं दिया। पैगंबर की बीवियां होके भी ये बच नहीं सकी। वाकई इससे पता चलता है ना कि कितनी भी करीबी रिश्तेदारी हो जाए किसी नेक इंसान के साथ, वो आपको बचा नहीं सकता जब तक कि आप खुद अंदर से नेक ना हो। अल्लाह अकबर, जब तक आपके अंदर खुद अल्लाह से वफादारी ना हो। कोई पहुंचा नहीं सकता, अब इससे ज्यादा करीबी क्या ताल्लुक हो सकता है जो मियां बीवी का ताल्लुक, मगर अमल वैसा नहीं था जैसा पैगंबर का था। आज इसके बावजूद हम ये सारी बातें पढ़ के भी अगर सोचें कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो नेचुरल एक बात है, कोई लोग उसके साथ पैदा होते हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है, उनके क्या इसमें, उनके साथ आपको क्या मसला है, वो तो बेचारे हैं, उनके अंदर खुद के अंदर इंक्लिनेशन होती है, तो ये सब बातें गलत हैं। ये देख लें इस कौम का क्या अंजाम हुआ, उनको ये नहीं कहा गया, अल्लाह ताला कभी उस चीज पे नहीं पकड़ता कि इंसान की वो नेचुरल बॉर्न ही उसके साथ हुआ, नहीं, जो उसके बस में ना हो उस पे नहीं अल्लाह ताला पकड़ता। लेकिन अगर कोई वो काम कर रहा है जो नेचुरल नहीं है, जो फितरत के कवानीन के खिलाफ है, इवन जानवर भी ऐसा काम नहीं करते जो इंसानों ने शुरू कर दिया, जानवर भी नहीं करते। इंसान जब आदमियों को औरतों के अंदर दिलचस्पियां खत्म हो गई और औरत ने अपने आप को इतना सस्ता कर दिया, इतना अपनी वैल्यू घटा दी कि हर जगह हर आदमी को देखने के लिए भी और हर तरह के काम के लिए औरत मुयसर आ गई, तो उसके बाद औरतों से उनके जी भर गए, उन्होंने कहा अब आदमी आदमियों से, औरतें औरतों से करें, वहां पे भी जी भर गए तो जानवरों तक पहुंच गए। कोई हद भी है? कोई हद नहीं है, ये आगे से आगे बढ़ना है। जब गलत कार्यों में इंसान पड़ता है ना, तो फिर वो कोई कोई इसका एंड नहीं होता। तो इससे यहां पता चला कि जो ऐसा काम करने वाले हैं, बाज लोग ये सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि ठीक है हम तो नहीं ये करते, लेकिन हम इसको बुरा भी नहीं समझते, आप लोग इनको क्यों गलत कहते हैं, क्यों ऐसा आप उनके खिलाफ कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो तो बेचारे हैं। तो देखें, जो किसी मुजरिम का साथ देता है ना, वो भी उस जुर्म में शामिल ही है, उसको भी उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। अब यहां पे देख लें, ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ये काम नहीं करती थी, लेकिन ये उनको सपोर्ट करती थी ना, वो तो नहीं थी इसमें। तो ये जो मुझे पता है, ये सारे लोग ऐसी चीजें लिख रहे हैं, ऐसे कमेंट्स लिख रहे हैं, अपनी सपोर्ट शो कर रहे हैं उन लोगों के लिए। वो कहते हैं हम नहीं ये करते, लेकिन हमारी सपोर्ट है इनके साथ, उनके हक में बात करते हैं, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उनके हक में थी, या बच गई वो। तो इसलिए अपनी सपोर्ट को भी देखें, आप किसके पलड़े में डाल रहे हैं, हक के कि बातिल के, गुनाह के या नेकी के। ये सिर्फ कमेंट लिख देना कोई छोटी बात नहीं है, ये आपकी सपोर्ट है। वमा हिया मिन ज़ालिमीन बिबाईद, और नहीं है वो जालिमों से कुछ दूर। अरे जो पूरा इलाका तबाह कर दिया गया, ये बस्तियां, ये जो सुदूम का इलाका है जिसको अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया, ये जालिमों से कोई दूर नहीं। यानी मुशरिकीन मक्का समझ जाओ, ये तुमसे कोई दूर नहीं है बस्तियां, तुम गुजरते हो अपने काफले लेके, तुम्हें पता है कि इनके साथ क्या हुआ।